नमस्कार भारत, तारीख 9 मार्च दिन शुक्रवार, मैं हूं वात्सल्य राय। अगरतला में आज त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे बिप्लव देव, पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद।
चार्ट से फादर्स भी आएंगे, मौलवी साहब भी आएंगे, तो जो हिंदू हैं हमारे वो मौलवी से भी आशीर्वाद लेंगे और फादर से ब्लेसिंग्स लेंगे और जो हिंदू संत हैं उनसे आशीर्वाद भी लेंगे।
यूपी की दो और बिहार की एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन, अररिया में आरजेडी और एनडीए ने झोंकी ताकत।
लालू यादव में ये सबसे बड़ी बात तो ये है, फिर का फसाद वाला काम नहीं है उसके।
पटफलना जितना है वो सब बीजेपी मैंडेट का है सब।
और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के पहले झंडे को लेकर राजनीति। खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
विश्व समाचार सुनिए सर्वप्रिय सांगवान से। त्रिपुरा में आज बीजेपी आईएफटी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिप्लव कुमार देब त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ समारोह अगरतला के असम राइफल ग्राउंड में होगा। 25 साल के लेफ्ट के शासन के बाद अब भाजपा यहां सरकार बनाने जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार अपने विवादास्पद आदेश पर मुहर लगा ही दी। अमेरिका में स्टील के आयात पर दूसरे देशों को 25% शुल्क देना होगा और एल्यूमिनियम के आयात पर 10%। 15 दिन के भीतर ये शुल्क लागू कर दिए जाएंगे। कई देशों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है और जानकारों का मानना है कि इससे व्यापार युद्ध शुरू हो सकता है। लेकिन ये शुल्क सभी देशों के लिए नहीं है। कनाडा और मेक्सिको को इससे छूट दी गई है। पिछले हफ्ते जब ट्रंप ने इस फैसले के बारे में ऐलान किया था तो इसका जमकर विरोध हुआ। खुद राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार गैरी कोन ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया था। स्पेन में 500,000 महिला श्रमिक एक दिन की हड़ताल में हिस्सा ले रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर देश भर में ये हड़ताल देखने को मिली। स्पेन में 200 जगहों पर प्रदर्शन जारी है जहां महिलाएं नारे लगा रही हैं कि अगर हम रुके तो दुनिया रुक जाती है। देश की कई राजनीतिक और मीडिया से जुड़ी महिलाएं इस हड़ताल में शामिल हुईं। स्पेन में एक ही काम के लिए महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा 13% कम वेतन मिलता है। कई प्रदर्शनों में बताया गया कि स्पेन में हर साल 67 महिलाओं की मौत अपने पुरुष पार्टनर की वजह से होती है। प्रदर्शनकारी महिला नोएमी ने बताया, मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे अपने दफ्तर में भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन हमेशा की तरह बड़े पदों पर ज्यादातर पुरुष ही हैं। लोग कहते हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं है या इतना बड़ा मुद्दा नहीं है या कहते हैं कि सुधार हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। प्रदर्शनकारी नोएमी के शब्द। श्रीलंका के कैंडी शहर से कर्फ्यू हटा दिया गया है। एक मिलिट्री कमांडर ने पुष्टि की है कि पिछले 12 घंटों में किसी बड़ी घटना की खबर नहीं है। कुछ मुसलमानों के साथ झगड़े में एक सिन्हली बौद्ध युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद से सिन्हली बौद्धों ने मुसलमानों के घरों और मस्जिदों पर हमले किए। पिछले 3 दिन से कैंडी शहर में तनाव का माहौल था और सांप्रदायिक हिंसा के चलते आपातकाल लगा है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप एक एनजीओ है जिसके सदस्य एलन किनन का कहना है कि श्रीलंका में इस खतरनाक सामुदायिक विभाजन को रोकने के लिए काफी कुछ करना होगा। उन्होंने कहा, मुसलमानों को लेकर सिन्हली बौद्ध शक में रहते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि वे काफी अमीर हैं, उनके बिजनेस हैं, लेकिन पूरे विश्व में इस्लामोफोबिया का जो माहौल बना है उसकी वजह से भी वे मुसलमानों को खतरे के तौर पर देखते हैं और डरते हैं कि उनकी जनसंख्या एक दिन सिन्हलियों से ज्यादा हो जाएगी। बहुत तरह की अफवाहें और मिथक फैलाए जा रहे हैं और सरकार ने उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के सदस्य एलन किनन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण कोरिया का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात करने को राजी हो गए हैं। ये मुलाकात मई तक होने की संभावना है। ये खबर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चंग यू यंग ने दी, जो उत्तर कोरिया में गए दल के प्रतिनिधि थे। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर उन्हें किम जोंग उन का संदेश दिया कि उत्तर कोरिया कोई परमाणु या मिसाइल परीक्षण नहीं करेगा। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में नेताओं ने गन कंट्रोल बिल पास कर दिया है। कुछ हफ्ते पहले ही एक युवक ने फ्लोरिडा के स्कूल में घुसकर गोलीबारी की थी, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी। इस बिल में राइफल खरीदने की उम्र को बढ़ाया गया है और साथ ही बंदूकें खरीदने के लिए 3 दिन का वेटिंग पीरियड भी रखा गया है। इस बिल के मुताबिक स्कूल में शिक्षकों समेत बाकी के कुछ स्टाफ के पास हथियार होंगे, लेकिन इस बिल में किसी तरह के हथियार पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। जैसा कि अभी सरप्रिया सांगवान से आपने समाचारों में सुना, अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। व्हाइट हाउस ने भी इसकी पुष्टि की है और ये खबर अभी अभी सामने आई है। वक्त और जगह मुलाकात का अभी तय नहीं हुआ है। एक प्रतिनिधिमंडल जो उत्तर कोरिया गया था उसने ट्रंप से भी मुलाकात की, उसके बाद ये जानकारी साझा की। इस बारे में अगले कार्यक्रमों में हम आपको ज्यादा विस्तार से जानकारी देंगे। नमस्कार भारत में सबसे पहले बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में आज विप्लव देव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे इस समारोह में। और क्या कुछ होगा बता रहे हैं अगरतला से बीबीसी संवाददाता सलमान रावी।
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की हर रोड असम राइफल्स मैदान की तरफ जा रही है, जहां बिप्लब देव के नेतृत्व में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का औपचारिक गठन होने वाला है। बिप्लब देव के अलावा जिष्णु देव वर्मा उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इस समारोह को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साह में है और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सहित कई मंत्री और नेता अगरतला पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समारोह में शामिल होने अगरतला पहुंच रहे हैं। पिछले 25 सालों से बाम मोर्चे की सरकार के सफाये को भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी भारत में अपनी बड़ी कामयाबी के रूप में देख रही है। यही वजह है कि समारोह को राजभवन की बजाय सार्वजनिक स्थान पर रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रवक्ता मृणाल सेन ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि समारोह में साधु संतों, पादरियों और मौलवियों की भी मौजूदगी होगी।
सीपीएम वालों ने कहा था कि ये वाटरलू के युद्ध हैं, हमने कहा नहीं, ये महाभारत के युद्ध हैं। इस बार अधर्म को पराजय होना है और धर्म को जीतना है। तो इस बार हमारे सभी मतलब उम्मीदवार मंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सब शपथ लेने से पहले जितने धर्म गुरु हैं, और हम धर्म के आधार पर भी विश्वास नहीं करते हैं। चार्च से फादर्स भी आएंगे, मौलवी साहब भी आएंगे, तो जो हिंदू हैं हमारे वो मौलवी से भी आशीर्वाद लेंगे और फादर से ब्लेसिंग्स लेंगे, और जो हिंदू संत हैं उनसे आशीर्वाद भी लेंगे।
इसके अलावा सभी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है।
कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी आए हैं, उनके साथ हमारे दो राष्ट्रीय महामंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, श्री राम माधव जी, वो पूर्वोत्तर के प्रभारी भी हैं, और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी श्री सुनील देवधर जी, वो तो त्रिपुरा में ही हैं, और हमारे चुनाव प्रभारी डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी आए हैं, और निर्मला सीतारमन जी और किरेन रिजिजू जी भी कल आई हैं।
तो क्या और भी मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा?
हाँ, असम, मणिपुर, यूपी, भाजपा शासित सबको बुलाया गया है।
भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में IPFT नामक एक क्षेत्रीय दल से चुनाव पूर्व गठबंधन किया था। 60 में से 59 सीटों पर हुए मतदान में भारतीय जनता पार्टी को 35 सीटें मिली, जबकि IPFT को 8 सीटें मिली, यानी गठबंधन के खाते में कुल 43 सीटें आई हैं। अभी चरीराम विधानसभा सीट पर चुनाव होना बाकी है। इस सीट पर उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूते ही बहुमत से ज्यादा सीटें हासिल कर ली हैं। मंत्रिमंडल में IPFT को सिर्फ 2 स्थान मिले हैं। सलमान रावी, BBC, अगरतला, त्रिपुरा।
भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा के वामपंथी किले पर केसरिया झंडा लहराने के लिए स्थानीय पार्टी IPFT के साथ गठबंधन किया था। नतीजे आने के बाद IPFT ने आदिवासी समुदाय से CM बनाने की मांग उठा दी। इसके बाद BJP ने जनजातीय नेता जिष्णु देव वर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया। वो भी आज शपथ लेंगे। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने देव वर्मा से बात की और सबसे पहले पूछा कि क्या उन्हें IPFT की मांग को देखते हुए ही उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे फोन किया जिस दिन रजिस्ट्री पार्टी मीटिंग चल रहा है, बोले आप डिप्टी CM के लिए जाइए, मीटिंग अटेंड करिए। अब यह सोच के बना, आई डोंट थिंक इतना नेगेटिव सोच के कोई बनाता है, इट इज़ अ पॉजिटिव थॉट
जी,
पॉजिटिव सोच के बनाया है ये। किसी को चेकमेट करने के लिए क्यों बनाएंगे किसी को?
लेकिन ये IPFT के लोगों का कहना है कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमको कुछ बोला गया था और हमारी वजह से इतनी सीटें आ गई।
देखिए, वो एस्पिरेशन तो सबका होता है, इट इज़ नॉट बैड टू हैव एस्पिरेशन, सबका आशा रहता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करता है वही होना करना पड़ता है।
आप तो चूंकि रॉयल फैमिली से हैं, आपको नहीं बोलते होंगे, लेकिन बाकी लोगों पे गुस्सा है उनका?
नहीं नहीं नहीं, क्यों गुस्सा क्यों होना है, पॉलिटिक्स है, वी हैव कम टू पावर, इतना मैंडेट मिला हमको, जन आदेश इतना मिला, तो गुस्से का कोई बात ही नहीं है। इधर थोड़ा सा मतभेद इधर उधर हो सकता है, ये परिवार में भी होता है, भाइयों में होता है, पिता पुत्र में होता है, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है।
लेकिन बीजेपी ने तो कभी अलग त्रिपुरा लैंड की डिमांड को सपोर्ट किया या नहीं, क्योंकि IPFT की तो पहली डिमांड तो यही थी।
नो, सपोर्ट किया नहीं किया दूसरा बात है, वी आर फॉर दी स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल्स। हम एक डिफरेंट एंटिटी है एंड IPFT इज डिफरेंट एंटिटी, अलग पॉलिटिकल पार्टी है। उन लोग का डिमांड वो लोग करेंगे, हमारा डिमांड हम रखेंगे। वी आर नॉट सेम पार्टी, सेम पार्टी होता तो एक ही पार्टी में आ जाता है ना, सिंबल भी अलग है। दे हैव दी चॉपर, वी हैव दी लोटस, तो हम लोग दो पार्टी है विथ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट डिमांड, सो दिस इज ओके।
लेकिन उनका चॉपर जो है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, फ्यूल की कमी कर दी आप लोगों ने?
नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। कैसे कैसे फ्यूल
तो, क्योंकि मिस्टर देव वर्मा ने पिछले दिनों कहा, जब ये रिजल्ट आए उसके बाद उनका कहना था कि हमारे सपोर्ट की वजह से ट्राइबल जो लीडर्स जीत कर गए हैं बीजेपी के, वो हमारे सपोर्ट की वजह से जीते हैं, दैट इज वाई इतनी सीटें आई हैं।
वाइस वर्सा, उनके सपोर्ट से हम जीते, हमारे सपोर्ट से उन्होंने जीते। पॉलिटिक्स में पार्टनरशिप में अलायंस में ऐसे ही होता है, तो अलायंस क्यों किया, एक के सपोर्ट दूसरा लेगा बोल के किया ना, अलायंस की जरूरत नहीं था। फिर हमने भी उनको सपोर्ट दिया, उन्होंने हमको सपोर्ट दिया, इतना अच्छा फल आया, सब मिलकर अब हम लोग मिनिस्ट्री चलाएंगे और बहुत स्पीडी डेवलपमेंट करेंगे ट्राइबल एरिया का।
ये थे जिष्णुदेव वर्मा, जो आज त्रिपुरा में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बात बिहार की। बिहार के अररिया लोकसभा सीट पर 11 मार्च को उपचुनाव होना है। ये सीट RJD नेता तस्लीमुद्दीन के निधन से खाली हुई है। बिहार के सत्ताधारी NDA और विपक्षी दल RJD दोनों के लिए ही ये चुनाव साख का मुकाबला बना हुआ है। दोनों पक्षों के क्या दावे हैं और मतदाता क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं मनीष शांडिल्य अपनी इस रिपोर्ट में।
अररिया लोकसभा उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। अररिया शहर हो या इसके ग्रामीण या कस्बाई इलाके, हर जगह पहले की तरह चुनावी रंग अब दिखाई नहीं देता। बैनर, पोस्टर, झंडे और दीवार पर लिखे नारे ना के बराबर ही दिखते हैं। प्रचार गाड़ियां भी इक्का दुक्का ही नजर आती हैं। इस सीट पर मुख्य मुकाबला सीमांचल के गांधी कहे जाने वाले दिवंगत मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे और राजद प्रत्याशी सरफराज आलम और भाजपा उम्मीदवार प्रदीप सिंह के बीच माना जा रहा है। हालांकि पप्पू यादव की पार्टी भी चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। अररिया एक मुस्लिम बहुल जिला है जिसमें 40% से अधिक आबादी मुसलमानों की है। रानीगंज ब्लॉक के रघुनाथपुर के मसूद आलम के मुताबिक इलाके के मुसलमानों की राय है कि राजद का समर्थन करना है।
हम लोगों का हक में काम जो भी किया है अच्छा किया। लालू यादव में ये सबसे बड़ी बात तो यह है, फिरका फसाद वाला काम नहीं है उसके पास, बिल्कुल क्लियर है, दोनों जात को अच्छी तरह से पालता है, समझिएगा।
बातचीत में आमतौर पर पूरे इलाके में मुसलमानों की यही राय सामने आती है। हालांकि मुस्लिमों का यह भी कहना है कि 2014 के चुनाव में जब नीतीश कुमार की पार्टी ने भाजपा से अलग हटकर चुनाव लड़ा था तो उन्हें मुस्लिमों के एक हिस्से का समर्थन मिला था, लेकिन इस चुनाव में नीतीश कुमार के कारण मुस्लिमों का समर्थन भाजपा को मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। यह लोकसभा क्षेत्र पहले दलितों के लिए आरक्षित हुआ करता था। इलाके के दलितों में मुसर समुदाय की अच्छी आबादी है। यह समुदाय बीते कुछ समय से भाजपा का समर्थक तबका माना जाता रहा है, लेकिन कुछ दिनों पहले NDA छोड़ महागठबंधन के साथ आने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के कारण स्थिति बदलने के संकेत मिल रहे हैं। जैसा कि कजरा गांव के युवा मंटू कुमार कहते हैं,
इस बार अगर मांझी आए हैं लालटेन क्षेत्र तो लालटेन में ही वोट जाएगा।
क्यों जाएगा लालटेन में वोट?
क्योंकि वो कुछ किए थे हम लोग के लिए, महादलित के लिए।
हालांकि इलाके में घूमने के दौरान यह बात भी सामने आती है कि मुसर समुदाय में कई लोगों को यह भी नहीं पता कि जीतन राम मांझी अब महागठबंधन के साथ हैं। मध्यवर्गीय जातियों की बात करें तो यहां यादव जाति का वोट भी निर्णायक माना जाता है। राजद की पूरी कोशिश है कि वह अपने कथित मुस्लिम यादव समीकरण को एकजुट रखे। लालू यादव के जेल में होने से उपजे सहानुभूति से यह गठजोड़ पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत दिखता भी है। हालांकि यादवों के युवा तबके का थोड़ा झुकाव भाजपा की ओर भी है। जो एक और तबका अररिया में अहम है वह है अति पिछड़ा वर्ग में आने वाली जातियां। इनका बड़ा समर्थन हाल के चुनाव में भाजपा को मिला है और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जैसा कि तामगंज इलाके के पशुपति गुप्ता दावा करते हैं,
हम लोग बिल्कुल सब यहाँ का जितना भी पचफोरना जितना है वो सब बीजेपी मैंडेट का है। सब
सीट की अहमियत को देखते हुए दोनों गठबंधनों के सभी बड़े नेताओं ने इलाके में जमकर चुनाव प्रचार किया है। इनमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सुशील मोदी, शरद यादव, शहनवाज आलम और जीतन राम मांझी जैसे बड़े नेता शामिल हैं। उम्मीदवारों की बात करें तो राजद उम्मीदवार सरफराज आलम ने ठीक चुनाव के पहले जोकीहाट के विधायक पद से इस्तीफा देकर जदयू छोड़ राजद का दामन थामा, जबकि भाजपा उम्मीदवार प्रदीप सिंह अररिया से पहले भी भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। मनीष शांडिल्य, BBC अररिया।
उधर यूपी में गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी आज प्रचार का आखिरी दिन है। फूलपुर में मुकाबला बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार अतीक अहमद की मौजूदगी ने मुकाबले को चतुष्कोणी बना दिया है। हालांकि प्रचार में उतनी गर्मी दिखाई नहीं दे रही है। सुनिए समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
पिछले दो दिन में चुनावी गहमा गहमी और रोड शो के नाम पर गुरुवार को कांग्रेस का रोड शो निकला। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रचार नहीं हो रहा है या फिर गाड़ियां नहीं घूम रही हैं, ये सब हो रहा है, लेकिन इनके पीछे लोग नहीं घूम रहे हैं। लूकरगंज इलाके में एक बुजुर्ग इसकी वजह बताते हैं।
भाग दौड़ बहुत हो रहा है लेकिन माइक वो यहाँ नहीं, हाँ माइक से अलाउंस नहीं हो रहा, भाग दौड़ लोगों के अंदर अंदर बहुत है।
तो कैसे भाग दौड़ कैसे हो रही है?
गाड़ी है, दो गाड़ी चार गाड़ी से लोग भाग रहे हैं पब्लिक के पीछे।
यही हाल फूलपुर कस्बे और उसके आसपास के गाँव का था। कुछ एक गाड़ियों के काफिले के साथ प्रत्याशी प्रचार के लिए और जनसंपर्क के लिए निकले हैं, लेकिन भीड़ भाड़ नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि चुनाव में लोगों की दिलचस्पी भी नहीं है।
ऐसा है, देखिए जब दीपक में जब तेल खत्म हो जाता है तो जब आखिरी बार जब थोड़ा सा तेल रह जाता है तो दीपक का प्रकाश बहुत तेज होता है, जो है उसके बाद फिर एकदम भूख से बंद हो जाता है। तो बीजेपी को इतना हल्के में आंकना वो बात नहीं, लेकिन
बढ़िया है, हम लोग चुनाव जो है गठबंधन से चुनाव जीतेंगे।
यह गठबंधन जो है हम मानते हैं कि मजबूत हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भाजपा लड़ाई में नहीं है, यहाँ जो भी सीधे लड़ रहा है वो कांग्रेस प्रत्याशी से लड़ रहा है। ये फूलपुर जो है कांग्रेस की पारंपरिक सीट है, यह उनकी धरोहर है।
इन गाँव की सड़कों पर जब हम घूम रहे थे उसके कुछ ही देर बाद यहाँ राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को जनसभा करनी थी। शाम को जब उनसे मुलाकात हुई तो हमने सड़कों पर चलने के अनुभव के बारे में उनसे सवाल किया।
आज कह सकता हूं कि फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में जितना काम 60 साल में नहीं हुआ सड़कों में, हमें एक साल अभी पूरा नहीं हुआ, एक साल 19 मार्च को पूरा होगा। और सरकार एक पहले दिन शपथ लेने के पहले दिन से सड़क आदि का काम नहीं शुरू कर देती है, लेकिन यह मैं कह सकता हूँ, मुझसे मत पूछिए, मेरे क्षेत्र की जनता से पूछिए।
बहरहाल हमारा अनुभव बहुत अच्छा नहीं था, सवाल इसीलिए पूछा था। वहीं सोराव कस्बे में जनसंपर्क करके लौट रहे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नागेंद्र पटेल मिले तो बोले कि गठबंधन के कारण उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा है।
सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए सुश्री बहन जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के एक है और सांप्रदायिक ताकतों से लड़े। अब ये सौभाग्य है, सौभाग्य है हमारा कि दोनों दल एक हैं हमारे लिए। यहाँ के हैं पटेल रहने वाले लोकल हैं, हमारे साथ है और समाजवादी पार्टी के साथ जनता है।
बहरहाल उम्मीदवारों के पास जनता तक अपनी बात रखने का एक दिन और है। जनता 11 तारीख को तय करेगी कि वो किसे संसद में भेजेगी, लेकिन जनता की सार्वजनिक चुप्पी और बातचीत के तेवर बताते हैं कि उसने ये सब पहले से तय कर रखा है, बस 11 तारीख का इंतजार है। समीर आत्मज मिश्र, BBC फूलपुर।
त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की जीत, बीजेपी शासित राज्यों की संख्या बढ़कर हुई 21। उधर तेलुगु देशम पार्टी ने मोदी सरकार से तोड़े रिश्ते। इधर विपक्ष में एकजुटता की कोशिशें फिर तेज। क्या है इस घटनाक्रम के मायने, यही है इस हफ्ते BBC इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001।
BBC इंडिया बोल।
श्रोताओं, इस बीच एक और बड़ी खबर जो अमेरिका से आ रही है, अमेरिका ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नेता मौलाना फजुल्ला की जानकारी देने पर इनाम की रकम बढ़ा दी है। टीटीपी नेता दिसंबर 2014 में पाकिस्तान के पेशावर में हुए एक स्कूल पर हमले समेत कई मामलों में वांछित हैं। हमारे साथ अमेरिका से फोन लाइन पर मौजूद है बीबीसी संवाददाता इरम अब्बासी। जी इरम, हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ अपडेट है इस मामले में।
जी, ये आज की ये लेटेस्ट स्टेप जो है अमेरिका ने लिया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो रहनुमा है, लीडर हैं मौलाना फजलुल्ला पर $5 मिलियन की रकम रखी है कि जो भी उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देगा उनके वेयर अबाउट्स के बारे में, उसको 5 मिलियन इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। साथ ही साथ दो और जो उनके साथी हैं जो कि अब्दुल वली और मंगल बाग, उन पर भी $3 मिलियन की रकम जो है इनाम के तौर पे रखी गई है। कहा यह जा रहा है अमेरिका के मुताबिक कि आखिरी मरतबा जो है उनके वेयर अबाउट के बारे में कि वो अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर पाए गए, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनका ऑपरेशन पाकिस्तान में भी उनके पास कैपेसिटी है कि वो ऑपरेशन रन करें।
यानी अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है किसी तरह की इनके बारे में।
जी बिल्कुल नहीं है, और ये इसीलिए इनाम दिया जा रहा है ताकि अमेरिका जो है उस तक पहुंच सके। और साथ ही साथ ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि ये कैसे टाइम पर किया गया है जब पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी जो है मिस तहमीना जंजुआ अमेरिका के दो रोजा दौरे पर हैं। वो ऑफिशियल टूर पे वॉशिंगटन में है और डिफरेंट मीटिंग्स के लिए यहाँ पर आई हैं, और ऐसे में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये ऐलान और ये रकम जो है इन तीन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो रहनुमा है उन पर रखी है ताकि उनके इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मिल सके।
जी, ये एक बड़ी जानकारी आई है। और एक और जानकारी इरम जो आ रही है अमेरिका से कि ट्रंप ने किम जोंग उन से मुलाकात का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, इस बारे में कोई कुछ अपडेट आपके पास है।
जी बिल्कुल, अभी तक यही पता चल रहा है कि ये इन प्रिंसिपल बात हुई है, और इससे पहले हमने देखा है कि एक और ट्वीट प्रेसिडेंट ट्रंप ने की थी नॉर्थ कोरिया के बारे में कि नॉर्थ कोरिया से जो है वो निगोशिएशंस के बारे में पॉजिटिव जो है हमें साइंस मिल रहे हैं, जो कि फॉल्स भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है हर तरह की कोशिश के लिए, चाहे वो फौजी हो या चाहे वो मुजाकरात की हो, बातचीत की हो, उस पर कोशिश करेगा। तो अब देखना ये है कि क्योंकि इस तरह की हमने पहले भी देखी है ओकेजन्स के जहाँ पर नॉर्थ कोरिया और अमरीका जो है एक मरतबा बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरी मरतबा फिर ये भी बात होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजिडेंट ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं नॉर्थ कोरिया को कि उनके पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स नॉर्थ कोरिया से ज्यादा है, तो इसलिए नॉर्थ कोरिया के साथ डट के मुकाबला किया जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन तो लिया जा रहा है, लेकिन अब देखना ये है कि प्रैक्टिकली ग्राउंड पर किस तरह इसको आगे बढ़ाया जाएगा, बातचीत शुरू की जाएगी या नहीं की जाएगी।
जी बहुत शुक्रिया इरम पूरी जानकारी के लिए। और अब जान लेते हैं दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियां क्या है। स्टूडियो में मौजूद है अखबारों के साथ सर्वप्रिया सांगवान।
वात्सल्य, एक खबर जो सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है वो है केरल की हादिया की शादी की खबर, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान्य करार दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में एनआईए को हादिया के धर्म परिवर्तन मामले की जांच का आदेश दिया था। एजेंसी ने दावा किया था कि केरल में ये धर्म परिवर्तन का पैटर्न एक नज़र आ रहा है। तो उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि ये शादी अमान्य है और हादिया को उसके माँ बाप के घर भेज दिया जाए। इस फैसले को हादिया के पति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और अब ये फैसला सामने आया है। और जो दूसरी खबर है वो है आरुषि हत्या मामले में, जिसमें सीबीआई ने आरुषि हत्या मामले में राजेश हरनूपुर तलवार को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। पिछले साल 12 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया था। और टाइम्स ऑफ इंडिया में ही यही खबर इस तरीके से छपी है कि पिछले हफ्ते ही 20 पन्नों की ओपिनियन सीबीआई को अपने वकीलों से मिली थी। एक खबर है इंडियन एक्सप्रेस में कि जो उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने राज्य में हुए 4 पुलिस एनकाउंटरों की जांच शुरू कर दी है।
जी।
जो मारे गए लोगों के परिवारों का दावा है कि ये एनकाउंटर फेक हैं, और पिछले साल मार्च से लेकर अभी तक 43 कथित लोगों को पुलिस एनकाउंटर ने मारे गए हैं जिन्हें कथित क्रिमिनल्स जो हैं। और जो खबर है एक वो दाऊद इब्राहिम के खास आदमी यासिन मंसूर मोहम्मद को यूनाइटेड अरब एमिरेट से भारत ले आया गया है। सीबीआई उन्हें 1993 मुंबई बम धमाकों के केस में ढूंढ रही थी, और भारत ने पिछले साल अगस्त में ही यूएई को एक अपील की थी कि वो यासिन मंसूर को वहाँ से निकाल दें।
जी बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए सर्वप्रिया। और अगली खबर कर्नाटक से। दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के पहले राज्य में झंडे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं इमरान कुरैशी।
देश में किसी दूसरे राज्य ने अभी तक ये नहीं किया था कि वो अपना ही एक झंडा बना लें, लेकिन औपचारिक रूप से कल कर्नाटका ने यही किया है। अभी तक जम्मू और कश्मीर का झंडा उस राज्य के खास दर्जे के मुताबिक उड़ रहा है। कल मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कर्नाटका का तिरंगा सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया। कर्नाटका का तिरंगा ऊपर पीला और नीचे लाल रंग का है और उसके बीच में सफ़ेद रंग है जिस पर राज्य का प्रतीक उदय रंग में है। झंडा दिखाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा,
ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಇದುವೆ।
मंत्रिमंडल ने हमें अधिकार दिया था कि हम इस विषय पर निर्णय लें कन्नड़ा संस्थाओं और कन्नड़ा लेखकों से बातचीत के बाद। हम इस निर्णय को केंद्र सरकार को भेज रहे हैं ताकि वो उसे झंडा कोड के अनुसार मंजूरी दें। ये थे सिद्धरामैया के शब्द। सिद्धरामैया की कांग्रेस सरकार के इस निर्णय से कानून के जानकारों के बीच ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या एक राज्य को अधिकार है कि वो देश का झंडा रहते हुए अपना ही एक झंडा बना लें। सिद्धरामैया पहले से ही ये कहते आ रहे हैं कि अपना एक झंडा बनाने के लिए कानूनी तौर से राज्यों पर किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन कानून के जानकार और राज्य के दो प्रमुख पूर्व एडवोकेट जनरल अलग राय रखते हैं। पहले रवि वर्मा कुमार ने कहा,
इन माय कंसीडर्ड ओपिनियन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इज फुल्ली एम्पावर्ड टू फ्लाई द फ्लैग।
झंडा कोड में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कोई राज्य अपना झंडा नहीं बना सकता है, लेकिन ये बात स्पष्ट की गई है कि कोई भी झंडा राष्ट्र झंडे से ऊपर नहीं उड़ना चाहिए और अहमियत सिर्फ राष्ट्र झंडे को दिया देना चाहिए। ये थे रवि वर्मा कुमार के शब्द। लेकिन एक और पूर्व एडवोकेट जनरल और पूर्व लॉ कमीशन के सदस्य बीवी आचार्य राज्य के झंडे का विरोध करते हुए इस मामले को अलग नजरे से देखते हैं।
Each state should not have a separate flag in a federal structure. We must have only
इस निर्णय के खिलाफ न्यायालय में लड़ना चाहिए। किसी भी राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो अपना अलग से एक झंडा बना लें। एक अलग झंडा विभाजन दिखाता है और देश की एकता के खिलाफ है। ये थे बीवी आचार्य के शब्द। ये मामला किस तरह कानूनी मोड़ लेगा वो इस समय कोई नहीं कह सकता है, लेकिन चुनाव के वर्ष में इसका राजनीतिक फायदा कांग्रेस पार्टी उठा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि यह सिर्फ कांग्रेस पक्ष का निर्णय है। दरअसल 2010 में जब अभी के केंद्र मंत्री और बीजेपी के तब के मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा ने यही झंडे का प्रस्ताव किया था, लेकिन थोड़े से विरोध के बाद वो फौरन प्रस्ताव को वापस कर लिया। मतलब ये कि गौरव की बात चुनाव के समय होने से उसके अलग मायने निकलते हैं और उसका असर भी अलग होता है, इसीलिए सिद्धरामैया ने यह झंडा उठाया है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
और अब बात खेल की दुनिया की।
इंडिया कैंटर्स टू अ विक्ट्री, अ सिक्स विकेट विक्ट्री फॉर इंडिया इन द सेकंड गेम।
और जैसे कि आपने आवाजें सुनी, भारत ने कल कोलंबो में हुए 2020 मुकाबले में बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट पर 139 रन बनाए। भारत को 140 रन का लक्ष्य मिला और भारत ने यह लक्ष्य 8 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। भारत की ओर से शिखर धवन ने 55 रन बनाए। 2 विकेट लेने वाले विजय शंकर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। ये टूर्नामेंट में भारत की पहली जीत है। और अब आखिर में सुन लेते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर सर्वप्रिया सांगवान से।
दक्षिण कोरिया का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात करने को राजी हो गए हैं। ये मुलाकात मई तक होने की संभावना है। त्रिपुरा में आज बीजेपी आईएफटी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिप्लब कुमार देब त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका में स्टील के आयात पर दूसरे देशों को 25% शुल्क देना होगा और एल्यूमिनियम के आयात पर 10%। 15 दिन के भीतर ये शुल्क लागू कर दिए जाएंगे। स्पेन में 500,000 महिला श्रमिक एक दिन की हड़ताल में हिस्सा ले रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर देश भर में ये हड़ताल देखने को मिली। श्रीलंका के कैंडी शहर से कर्फ्यू हटा दिया गया है। एक मिलिट्री कमांडर ने पुष्टि की है कि पिछले 12 घंटों में किसी बड़ी घटना की खबर नहीं है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी दीपक जसरोटिया के हाथ। फेसबुक प्रसारण में मदद की मानसी ने। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक तमाम खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।